श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 24 श्लोक 17 25 जुलाई 2015 22 ग्लेस कमल लोचन टू।
राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। गोवर्धन लीला का प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण सारे व्रजवासियों को, उनके पिताजी खास करके, उन्होंने देखा कि वो इंद्र की पूजा करने के लिए तत्पर है। तो उन्होंने प्रश्न पूछे, क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, कौन है देवता, उसका फल क्या है। तब नंद महाराज ने अनेकों तरीके से उन्होंने समझाया, हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं क्योंकि इंद्र की वजह से बारिश होता है तो घास उगता है, तो गाय खाती है, हमारी खेती भी होती है, तो वैश्यों का कर्तव्य इस प्रकार इंद्र को प्रसन्न करना, इंद्र को प्रसन्न करने से हमको बारिश प्राप्त होती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात को सुन के अपना तर्क देते हैं। ये तर्कों के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि इंद्राय मन्युम जनयेत, इंद्र के मन में क्रोध को उत्पन्न करना था। तो क्रोध को उत्पन्न करने के लिए कृष्ण ने सोचा कि इन लोगों को, मेरे पिताजी और अन्य ब्रजवासियों को, ये जो यज्ञ जो कर रहे हैं इंद्र के लिए, उसको बंद करा के गोवर्धन की पूजा कराऊं। तो गोवर्धन की पूजा जब होगा तो निश्चित रूप में इंद्र को क्रोध आएगा, क्रोध में बारिश चलाएगा और मैं गोवर्धन को उठाऊंगा और आनंद लूंगा। कृष्ण का पूरा प्लान था, लेकिन नंद महाराज की जो तर्क है, उन तर्कों को खंडन करने के लिए इन श्लोकों को उच्चारण कर रहे हैं। प्रायः 13वां श्लोक से लेके 24वां जो श्लोक है उधर तक, 23 या 24वां या 25वां श्लोक तक जो है, उनका एक ही तर्क था कि आपको इंद्र को पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप केवल कृष्ण का पूजा, गोवर्धन का पूजा करो, ब्राह्मणों को पूजा करो, गायों की पूजा करो। यानी इंद्र का पूजा को रुका के कृष्ण चाहते थे कि व्रजवासी जो है इन तीनों का पूजा करे, गायों का, ब्राह्मणों का, गोवर्धन का पूजा करे। तो उसके लिए उन्होंने तर्क पेश किया। जब तर्क पेश किया जाता है, ये जरूरी नहीं वो तर्क जो है वो सही सिद्धांत के ऊपर आधारित होकर पेश किया गया हो। कभी कभी नास्तिकतावाद को नास्तिकता से खंडन किया जाता है। जैसे आप जानते हो 6 दर्शन हैं जिसको षड दर्शन कहा जाता है, 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी। इसके नाम इस प्रकार है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा। न्याय दर्शन के अनुसार, न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार नास्तिक है वो, लेकिन नास्तिकता का भी एक प्रकार का हद है वो। वो कहते हैं कि पूरा संसार का स्रोत जो है वो एटम्स है, यानी अणु है, अणु से पूरा जगत उत्पन्न हुआ है, अणु के द्वारा ही सारा जगत जो है पालन हुआ है, और अणु के द्वारा ही, अणु के अंदर ही सारे जगत में प्रत्येक तत्व जो है विलीन हो जाता है। ये न्याय वैशेषिक दर्शन है। न्याय वैशेषिक के बाद आता है सांख्य दर्शन, जिसके अंदर वर्णन होता है कि तीनों गुणों को ही संस्पर्श से पूरा जगत चल रहा है, अनिश्वर, निरीश्वरवाद है, यानी ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, ये सांख्य दर्शन है। और योग, भगवान को स्वीकार करते हैं या परमात्मा को स्वीकार करते हैं योग, योग शास्त्र में, योग दर्शन में, वो भी निरीश्वरवाद है। योग भले ही है, परमात्मा परमात्मा कहते हैं, लेकिन परमात्मा की शाश्वतता को वो स्वीकार नहीं करते, परमात्मा की व्यक्तित्व को स्वीकार नहीं करते, परमात्मा की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते, लेकिन कहते जरूर है परमात्मा। उसके बाद 5वां जो सिद्धांत है जिसका नाम है कर्म मीमांसा, कर्म मीमांसा सिद्धांत या कर्मवाद सिद्धांत के अनुसार कर्म ही श्रेष्ठ है। तो उनके लिए अगर भगवान है भी तो कर्म के अधीन में है, ये कर्म सिद्धांत का सार है। उसके बाद आता है वेदांत, जिस वेदांत के अंतर्गत हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में, भगवान के रूप में, जो व्यक्ति के रूप में, परम पुरुष के रूप में घोषणा की गई है, तो ये शैली नई बात नहीं है। अगर कोई व्यासदेव ने ये न्याय वैशेषिक सांख्य ये तीन सिद्धांतों को ने खंडन किया, वो कैसे खंडन किया? ये जो योग शास्त्र है, योग सिद्धांत है, योग सूत्रों के ऊपर व्याख्या करते हुए व्यास देव ने खंडन किया न्याय वैशेषिक सांख्य को। तो व्यास देव के अनुसार न्याय वैशेषिक सांख्य इतने वो नास्तिक सिद्धांत है, उसको खंडन करने के लिए सही आस्तिक सिद्धांत की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक चिड़िया है, उसको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता नहीं है, एक खाली डंडा या कुछ छोटी सी अस्त्र कुछ भी चल जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा ये इंद्र का पूजा को बंद कराने के लिए शुद्ध वैष्णव सिद्धांत की कोई आवश्यकता नहीं है, नास्तिक सिद्धांत है या सांख्य सिद्धांत है या निरीश्वर सिद्धांत नहीं, नए न्याय वैशेषिक है वो भी चलेगा, या सांख्य सिद्धांत वो भी चलेगा, ये कर्मवाद भी चल जाएगा, वेदांत की आवश्यकता नहीं है। इंद्र की पूजा को बंद कराने की जो संदेश देने के लिए, उनको बताने के लिए, या उसको इंद्र की पूजा बंद कराने के लिए, ये कोई इतना बड़ी बात नहीं है कि उसके लिए वेदांत की आवश्यकता पड़े। तो व्यास देने भी यही क्रिया इस्तेमाल किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया, योग शास्त्रों के ऊपर, योग सिद्धांत, पतंजलि के योग सिद्धांत के ऊपर व्याख्या करते हुए, क्योंकि योग सिद्धांत के ऊपर व्यास देव ने इसलिए व्याख्या किया क्योंकि व्यास योग सिद्धांत में पतंजलि भगवान की अस्तित्वता को स्वीकार करते हैं। तो व्यास देव ने व्याख्या किया क्योंकि कोई भी नास्तिक है उसके ऊपर व्यास देव की कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, इसलिए व्यास देव ने क्या किया, इन योग सिद्धांत के ऊपर व्याख्या करते हुए तो दो कार्यों को किया। एक, सबसे पहला न्याय वैशेषिक सांख्य इन तीन सिद्धांतों को खंडन कर दिया। तो ने सोचा वेदांत की जो लंबा चौड़ा विस्तार जो है वो थोड़ा कम हो जाए, इसलिए जब वेदांत की चर्चा हुआ, वेदांत सूत्रों में न्याय वैशेषिक सांख्य खंडन करने के लिए बहुत कम सूत्रों को इस्तेमाल किया गया है, वो ज्यादा लंबा चौड़ा चर्चा नहीं किया गया है न्याय वैशेषिक और सांख्य खंडन करने के लिए। क्यों? जब योग सिद्धांत की व्याख्या में उसका खंडन हो चुका है, जो वेदांत में इतना लंबा चौड़ा इसको खंडन करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए पहली बात व्यास देव ने क्या किया, कर्म सिद्धांत के द्वारा न्याय वैशेषिक सांख्य खंडन कर दिया। जैसे एक चिड़िया के ऊपर ब्रह्मास्त्र चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई विद्वान आया एक गुरुकुल में, तो इतना बड़ा विद्वान नहीं है लेकिन अपने आप को बड़ा विद्वान समझता है, तो आया मैं आपसे आपके गुरुकुल के जो आचार्य गुरु है उनसे विवाद करना चाहता हूं। तो गुरुकुल के आचार्य ने सोचा देखो मैं अपने शिष्यों से पहले कर लेना, उनको हरा के बाद में मेरे पास आना। तो भले वो शिष्य इतना पारंगत नहीं है, वो हो सकता है वो गलत भी बोले, लेकिन उनको हराने के लिए इतना बड़ा व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण भी वही जो सही सद्धर्म को स्थापना करने वाले कृष्ण, गलत सिद्धांत के द्वारा इंद्र की पूजा जो चल रही है उसको गलत है करके साबित कर रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। व्यासदेव ने दूसरा बात क्या किया, उन्होंने जब उन्होंने जो योग सूत्रों के ऊपर व्याख्या करते हुए, पहली बात तो उन्होंने न्याय वैशेषिक सांख्य खंडन करते करते उन्होंने दूसरी बात क्या किया, ये भी साबित किया किस प्रकार भले ही पतंजलि कहते हैं कि मैं आस्तिक हूं, परमात्मा को स्वीकार किया हूं, जो पतंजलि का जो परमात्मा है वो नास्तिकता वाला परमात्मा है। तो ये दो बातों को व्यासदेव ने अपनी जो व्याख्या है योग सूत्रों की व्याख्या के ऊपर उन्होंने स्थापना किया। चलिए अभी हम कृष्ण के जो आर्ग्यूमेंट्स है उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो कृष्ण आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया, सबसे पहला बात कहा भगवान कर्मवाद को स्थापना किया, 13वां श्लोक की बात है, कर्मवाद को स्थापना किया या कर्म मीमांस को स्थापना किया। कैसे स्थापना किया उन्होंने? कर्मणा जायते जंतु कर्मे नैव प्रलीयते सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्माण्येव विबध्यते। इस संसार में तीन चीजें हैं, वो है जन्म या सृष्टि, स्थिति और प्रलय। तो ये तीनों जो है वो कर्म के द्वारा ही होता है, इसको भगवान ने बताया, जिसको कर्मवाद या कर्म मांस कहा जाता है। तो ये कर्मवाद को सबसे पहले कहा, धर्मवाद का जो मूलभूत सिद्धांत है उसको कहा, बाद में विस्तार करते हैं अन्य श्लोकों में। जो कर्मवाद का मूलभूत सिद्धांत यही है, या तो इमानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। उपनिषदों में, तैत्तिरीय उपनिषद में इस बात को आता है, ब्रह्म की परिभाषा को वर्णन करते हुए मृगो वही वरुणी। तो इधर एक गुरु एक शिष्य को कहते हैं, जाओ जाके पता करो भगवान कौन है, ब्रह्म तत्व क्या है। तो ब्रह्म क्या निरूपण कैसे होगा? जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा सब कुछ पालन होता है, जिनके द्वारा सब नाश होता है। तब बड़ा बड़ा रिसर्च करके आया, रिसर्च करके आके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं देखा है कि हर चीज जो है वो अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न के द्वारा सब जीवित है, और अन्न के द्वारा ही अन्न के किसी और के लिए अन्न बन जाता है। तो वैसे ये जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठिता हुआ उसके अंदर ये षड दर्शन प्राप्त होता है, जिसमें कहा गया है या षड दर्शन में जो कर्म मांस के जो सिद्धांत को स्थापना करने वाले वो कहते हैं कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही ब्रह्म है, कर्म ब्रह्म भगवान को कहते हैं, कर्म ब्रह्म, कर्म ही ब्रह्म है, कर्म ही भगवान है। जैसे इस श्लोक में आज भी कहा गया है गुरुर ईश्वरः कर्मेव हि गुरुर ईश्वरः, कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। इस बात को 13वां श्लोक में ही कहा, वापस इधर पुनरावृत्ति किया जा रहा है, लेकिन बात यह है कर्मणा जायते जंतु, कर्म के द्वारा ही सब लोग जन्म लेते हैं। दूसरा कर्मे वही प्रलीयन्ते, मृत्यु भी कर्म में ही हो जाता है। और सुखम दुःखम भयम क्षेमम, जितना भी भावनाएं उत्पन्न होती है हृदय में, अनुभूतियां उत्पन्न होते इस जगत में, वो भी कर्म के द्वारा होता है। ऐसे कर्म मीमांस के सिद्धांत जो जैमिनी ने स्थापना किया उसको सबसे पहला इधर कृष्ण वर्णन किया। बाद में 14वां श्लोक में थोड़ा सा और व्याख्या करते हैं, क्योंकि कर्म मीमांस के सिद्धांत में एक त्रुटि पाई गई है, जिसने विद्वानों ने कहा नहीं आप कर्म को अगर श्रेष्ठ करोगे, कर्म तो खाली सूत्र मात्र है, सिद्धांत मात्र है, कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो निर्जीव है, अचेतन है, तो उसके अंदर तो ईश्वर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन टिकट लेने जाओगे, जब ट्रेन टिकट लेने जाओगे भले ही रेलवे ने एक सिस्टम बनाया, एक रूल रेगुलेशन बनाया, इतना पैसा दो को इतना मिलेगा, लेकिन टिकट देने वाला तो एक है ना, एक व्यक्ति है ना। तो 14वें श्लोक के भगवान ने ये कर्म मीमांस के सूत्रों के ऊपर एक जो आरोप है, नहीं एक ईश्वर की आवश्यकता है, ईश्वर के बिना कर्मों को फल को कौन देगा, भले ही कर्म सिद्धांत श्रेष्ठ माना जाता है लेकिन उसके ऊपर ईश्वर है। तब भगवान ने इसको खंडन किया, नहीं कोई जरूरत नहीं ईश्वर का, अगर मान लो ईश्वर है भी तो कौन है वो ईश्वर, कर्म के अधीन में है। कैसे कर्म के अधीन में है? वो कर्म के अधीन में इसलिए है क्योंकि अगर मान लो कि व्यक्ति ने अच्छा किया तो ईश्वर को अच्छा देना ही पड़ेगा। तो ईश्वर इज सबसर्वियंट टू कर्म। देखिए ये कर्म मीमांस का कितना कठोर सिद्धांत है, कितना बड़ा नास्तिकता है। देखिए ये कहना कि भगवान नहीं है वो नास्तिक है, वो अच्छा है, बल्कि ऐसा एक ईश्वर को स्वीकार करना जो आपके कर्मों के अधीन हो। जैसे हम कर्मों के अधीन में कहते हैं, देख कर्म मीमांस इतना कहता है कि भगवान भी आपके कर्मों के ऊपर अधीन है। मतलब क्या है, आपने अच्छा किया तो ईश्वर को अच्छा करना ही पड़ेगा। ये बहुत डेंजरस है, यानी कर्मों को आपके कर्मों के अधीन में भगवान है। एक ऐसे भगवान है भी देखो, एक ऐसे ईश्वर है ये कर्म मीमांस के ईश्वर जो होते हैं ना, ये इस प्रकार के ईश्वर है। हमने ऐसा सुना है कि हमारे कर्मों के द्वारा हम बंधे हुए हैं, लेकिन कर्म मीमांस के द्वारा स्थापित जो ईश्वर है, उनकी ईश्वर की कल्पना जो है वो ऐसी कल्पना है, ये जो है ईश्वर ये सारे कर्मों के फलों को प्रदान करने वाला होने पर भी वो सबके कर्मों के द्वारा बंधा हुआ है। मैं केवल अपने कर्मों के द्वारा बंधा हूं, लेकिन कर्म मीमांस के ईश्वर की कल्पना ऐसा है, वो भी कृष्ण की पूजा करते हैं, वो भी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उन देवताओं का पूजा करने के बाद भी बेचारे उन देवताओं की कल्पना के बारे में क्या विचार करते हैं, अगर मैं ये करूंगा ना इसको इधर आके मुझे देना ही पड़ेगा। बहुत डेंजरस फिलॉसफी है। इसलिए वेदांत सूत्रों में सबसे मजबूत और सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी हमारा वेदांत शास्त्रों में वो अगर कोई है तो कौन है, कर्मवादी या कर्म मीमांसावादी, जैमिनी के द्वारा स्थापना किए गए। सबसे बड़ा समस्या यही है, जब आप बाहर जाओगे प्रचार करने के लिए, नास्तिक लोगों को परास्त करना ज्यादा समय नहीं लगता, परास्त कर दोगे, लेकिन कर्मवादियों को परास्त करना बहुत मुश्किल होता है। ये कर्मकांड जो फिलॉसफी है, कर्मकांड की बात नहीं, कर्म मीमांस फिलॉसफी है। देखिए कर्मकांड अलग है, कर्मकांड को ही श्रेष्ठ मानना ये कर्म मीमांस फिलॉसफी है। देखिए हमको कर्मकांड से नफरत नहीं है, कर्मकांड को ही श्रेष्ठ मानना, उसी को सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना, ये समस्या है। तो ये जो कर्म मीमांस के जो फिलॉसफर्स है, उनका जो जब वो पूजा करते, मान लो कोई दुर्गा का पूजा कर रहा है, उसके हृदय में क्या भावना प्रति दुर्गा के प्रति, अगर बताऊं, भले ही वो दुर्गा की स्तुति करता है, उसके मन में भावना अगर मैं ये कर रहा हूं ना, दुर्गा मेरा इच्छा पूरा करना ही पड़ेगा, मैंने एक कर्म किया है तो उसका फल मिलना ही पड़ेगा, मैं मेरी जो आराध्य देव तथागत आराध्य देव उसको वश में कर लेता हूं, उसको ऐसा वशीभूत कर देता हूं ताकि मैं जो किया उसका फल देना ही पड़ेगा। इतना डेंजरस फिलॉसफी देखिए, बाहर की ओर से आराधना जरूर किया जा रहा है, वो इस प्रकार है जैसे एक पत्नी पति को बहुत सेवा करती है, क्या भाव से, मैं इसके ऐसे वश में लाऊंगी जो मैं बोलूंगा ऐसा करना ही पड़ेगा उसको। तो ये कर्मकांड की फिलॉसफी है। जैसे भगवान जो है भक्तों के वश में हो जाते हैं, हो जाना अलग है, लेकिन भक्त के हृदय में ये भावना रहना कि मैं इसको वश में करके मैं अपना काम कराऊंगा, ये बहुत अंतर है। ये जो कर्मकांड के फिलॉसफी के अनुसार, जैसे आपके घर में जो आते हैं कर्मकांड का जो विधि करने वाला ब्राह्मण, जब उसके अंदर इतना अहंकार रहता है, मैं ये मंत्रों को उच्चारण करूंगा ना, ऐसा उच्चारण करूंगा तो उसको आके आपका काम करना ही पड़ेगा, ऐसा यानी अपनी आराध्य देव को अपनी वश में करके मेरा काम उनसे निकालना, ये कर्मकांड का या कर्म मीमांस का फिलॉसफी का मूल भाव है। तो इसलिए वो कौन सा ईश्वर है, भले ही कर्म मीमांस में ईश्वर की आराधना के बारे में वर्णन किया गया है, भगवान की सत्ता को स्वीकार किया गया है, होने पर भी इधर कृष्ण ने क्या फर्स्ट क्लास आर्ग्यूमेंट दिया, क्या दिया, अस्ति चेद् ईश्वरः कश्चित्, अगर ईश्वर है भी स्वीकार करे फल रूपो अन्य कर्मणाम, तो ने कहा कि केवल फल के कर्मों को कर्मों के फलों को देने के लिए ही है, कर्तारं भजते स्योपी, अगर जो कर्म करने वाला भजन करने पर भी नहीं, अकर्तुर प्रभु ही सहा। देखिए अंग्रेजी में जब प्रभुपाद लिखा ट्रांसलेशन, आफ्टर ऑल देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बीइंग द बेस्ट ऑफ फ्रूट अनलेस फ्रूटिव रिजल्ट्स हैव बीन एक्चुअली परफॉर्म्ड, जब तक कोई कर्तारम जो कर्म करने वाला कर्म नहीं करता है तो ईश्वर भी बंधा हुआ कर्मों का फल नहीं दे सकता। देखिए आपने बचपन में ऐसे एक बात सुना होगा, माता पिता आपको बोलेंगे बेटा अच्छा पढ़ो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो बुरा मिलेगा, ये गलत बात है। ये जरूरी नहीं है कि आप अच्छा करो तो अच्छा ही मिलेगा, बुरा करो तो बुरा ही मिलेगा, ये मिलेगा मत बोलो, मिल सकता है, क्योंकि जो कर्मों का फल देने वाले भगवान जो है वो स्वराट है, स्वतंत्र है। जैसे श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक जो है, जन्माद्यस्य तो उन्मयाद तपश्चर्ते शब्दनेश स्वराट, ये स्वराट शब्द जो है ये कर्म मीमांस के सिद्धांत को खंडन करने के लिए है। ये स्वराट शब्द अति महत्वपूर्ण है, अभिज्ञ मतलब सब कुछ जानते हैं, स्वराट का अर्थ क्या है? स्वयमेव ही राजयते इति स्वराट, स्वयं अपने ऊपर राजा है, उनका कोई राजा नहीं है। लेकिन इधर कर्मीमांसा सिद्धांत के अनुसार भले ही वो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ऐसे ईश्वर को मानते हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। किसके द्वारा? जो कामुक लोगों की कर्म वासनाओं के, कर्म कांड की क्रियाओं के द्वारा ऐसे बंधन है। जैसे हम बोलते हैं ना, भक्ति के द्वारा भगवान बंधे जाते हैं, अपनी स्वेच्छा से बंधे जाते हैं। लेकिन कर्म इमाम सिद्धांत के अनुसार क्या है? नहीं, मैं उनको बांध दूंगा अपने प्रयास के द्वारा, अपनी कर्म के जो नियम है, क्रियाकांड होता है ना अलग अलग प्रकार के, उसके द्वारा मैं जिसको ईश्वर मानता हूं उसको बांध के रख दूंगा। ये बहुत डेंजरस है। ऐसे लोग बोलते हैं ना डेमीगॉड वर्षे, देवताओं की पूजा। देखिए वैष्णव लोग भी देवताओं को पूजा करते हैं, लेकिन उसकी भावना अलग रहती है। वो शिव जी को आराधना करते हुए मानते हैं कि शिव जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन जब ये कर्मकांडी लोग देवताओं को पूजा करते हैं, ये देवता लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये मुझे वश में करके मेरे उसका काम निकाल रहा है मेरे से। जैसे कोई तांत्रिक होता है ना, वो क्या करता है, वो कुछ ऐसी विधि करके भूत को अपने वश में करके अपना काम निकाल लेता है, ठीक है ना। तो वैसे ही फिलॉसफी जो है शिव जी के ऊपर, कभी कभी ये जो कौन सा व्रत है, वो सत्यनारायण व्रत करते, वो भी इसी प्रकार है। ये कर्म मीमांसा सिद्धांत के उससे उत्पन्न हुआ एक ये जो सत्यनारायण पूजा है, वो सोचते हैं नारायण भी सत्य है, क्यों सत्यनारायण है, ऐसे नारायण सत्य है ही, उनको सत्यनारायण बोलने की जरूरत नहीं, नारायण ऑलवेज ट्रूथ, सत्यम वरम सत्यवतम सत्यम, वहां बहुत जगह कहा गया है सत्य सत्य करके, तो आपको सत्यनारायण करके बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन क्यों पूजा करते हैं? वो सोचते हैं कि नारायण भी एक देवता जैसा है, तो मैं ये विधि करूंगा तो उसको मैं वश में करके अपना काम करा दूंगा। तो इसलिए कर्मकांड बहुत डेंजरस फिलॉसफी है। तो भगवान ने 14वें श्लोक में कर्मकांड के सिद्धांत के द्वारा, ध्यान में रखे बहुत जटिल श्लोक है, ऐसा आसान नहीं इसको समझना। बच्चा है 7 साल का, लेकिन क्या बोल रहा है कि उसके पीछे 11 सिद्धांत है। पता नहीं 7 साल के बच्चे को भी उस समय में इतना ज्ञान होता था षड् दर्शन का, अभी 60 साल का बुढ़े को भी नहीं होता है सब चीज का। जो भी है, अभी 15वें श्लोक में उन्होंने किया कि किम इंद्राय भूतानाम लिविंग इन इन दिस वर्ल्ड आर फोर्स टू एक्सपीरियंस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर पर्टिकुलर वर्क। ठीक है, मान लो कि आपने पूजा किया, कृष्ण ने कहा नंद महाराज को, ठीक है इंद्र का पूजा कर भी दिया, आपके अगर कर्मों में नहीं है, बारिश नहीं है, नहीं मिलेगा। अगर इंद्र का पूजा नहीं किया, इंद्र का पूजा आपने नहीं किया, अगर पूजा नहीं करने के बाद अगर आपके कर्मों में बारिश लिखा हुआ है, समृद्धि लिखा हुआ आएगा, तो इंद्र का क्या काम है? इंद्र का व्हाट इज द यूज ऑफ इंद्र? आप हमारे कर्मों का फल हमको मिलने वाला है। अगर आप मान लो कि ट्रेन टिकट लेने के लिए, खरीदने के लिए गए, ठीक है, अगर आपने 10 रुपए दिया, उसको टिकट उसको देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? उसका टिकट देना ही पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति, आप उसको पूजा करो पूजा ना करो, अगर आप 10 रुपए दोगे तो टिकट देगा, अगर 10 रुपए नहीं दोगे पूजा करने के बाद भी नहीं देगा, है कि नहीं? इसलिए अगर आपके कर्मों में अगर कुछ लिखा हुआ है तो निश्चित रूप में मिलेगा। अगर आपके कर्म में नहीं है, कितना हंगामा कर लो, कितना भी पूजा कर लो, नहीं मिलने वाला है। इसलिए सिंस द लॉर्ड इंद्र कैन नॉट इन एनी वे चेंज द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, देवताओं के पास किसी ना किसी तरीके से उनके पास जरा सा भी आपके कर्मों को बदली करने का उनका उनके पास शक्ति नहीं है। ये कर्म इमाम सिद्धांत भी कहता है इस बात को, वो भी स्वीकार करता है कर्म इमाम को, क्योंकि हमारा ईश्वर जो है ना हमारे कर्मों में अगर है तभी दे सकता है, अगर नहीं है नहीं दे सकता है। तो कर्म के कांड के द्वारा मैं ऐसी पुण्य को सृष्टि करूंगा जिसके द्वारा ईश्वर बाध्य हो जाता है मुझे अच्छा देने के लिए। अगर मेरे जीवन में अगर कुछ खराब है या कुछ ग्रहों का कुछ गलत हो रहा है, तो मैं ऐसा क्रिया करूंगा जिसके द्वारा ऐसा पुण्य को अर्जन करूंगा ताकि पहले किया गया पाप जो है उसको मैं प्रायश्चित कर सकता हूं। ये कर्म मीमांसा का कर्म कांड का सिद्धांत है। तो 15वें श्लोक में इंद्र को तो पूरा फेल कर दिया भगवान ने, उन्होंने कहा कि अगर आपके कर्मों में है तो बारिश मिलेगा, पूजा करो ना करो, अगर आपके कर्मों में नहीं है तो बारिश नहीं मिलेगा, पूजा करो ना करो। इसलिए पूजा करने की आवश्यकता है. व्हाट इज द यूज. आगे 16वां श्लोक में थोड़ा सा ये जो 14वां श्लोक में कर्मकांड को या उसको खंडन करने के लिए भगवान ने न्याय वैशेष निरीश्वरवाद न्याय विशेष को थोड़ा सा इस्तेमाल किया. अभी 16वां श्लोक में स्वभाव की बात आई. स्वभाव की बात जब होती है तो समझना चाहिए थोड़ा सा सांख्य सिद्धांत को इस्तेमाल किया. वैसे तो भगवान आज के श्लोक के बाद जो है सांख्य सिद्धांत या 19वां श्लोक से लेकर तो 19वां श्लोक से लेके सांख्य सिद्धांत के द्वारा आगे वो खंडन करते हैं. लेकिन 16वां श्लोक में कल जो हमने सुना उसके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया स्वभाव. स्वभाव तंत्रो ही जन. तो अगर कोई आर्ग्यूमेंट करे अरे ठीक है आप बोल रहे हो कि इंद्र जो है वो अगर हमारे कर्मों में नहीं है तो नहीं देंगे, अगर कर्मों में है तो उनको देना पड़ेगा. लेकिन बात यह है कि अगर इंद्र के द्वारा ही बारिश होता है, वेदों में ऐसा कहा गया है, तो इंद्र अगर हमारे पर नाराज हो जाएंगे, नाराज होके हमारी कर्मों में जो लिखा हुआ है बारिश लिखा हो तो रोक देंगे, तो या रूट के इंद्र रूट जाके बैठ जाएंगे और बारिश नहीं देंगे तो. तब भगवान ने एक बड़ा श्लोक कहा. देखो इंद्र का स्वभाव है बारिश देना. जैसे मान लो कोई एक गायक है, इसका स्वभाव है गाना, इसका स्वभाव है. देखिए कल हमने स्वभाव के विषय में बहुत सुना. ये स्वभाव ऐसी चीज है वो जल्दी छूटता नहीं है. प्रकृति ज्ञानवान अपनी, जिसे जय भगवान कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के स्वभाव के अनुसार चलता है. किसी का स्वभाव जो है क्रोध होना, क्रोधित करना उसका स्वभाव है तो वो क्रोध करेगा ही व्यक्ति. अगर किसी का स्वभाव जो है वो रजोगुणी है तो रजोगुण के हिसाब से ही कार्य करेगा वो. अगर किसी का स्वभाव, हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है. तो कृष्ण ने कहा इंद्र का स्वभाव है बारिश देना, उनका काम करना. जैसे कोई गाने वाला है, अगर कोई गायक है उसको कितना भी नाराज कर दो वो बोलेगा जरूर मैं नहीं गाऊंगा जाओ, बोलेगा मैं नहीं गाऊंगा, लेकिन वो गाएगा जरूर, वो जरूर गाएगा क्योंकि वो उसका गाना उसका स्वभाव है तो गाएगा जरूर. ही कैन नॉट लिव विदाउट सिंगिंग. कितना भी नाराज हो जाए वो गाएगा ही. इसलिए किसी का कुछ स्वभाव होता है तो वो स्वभाव को छोड़ ही नहीं सकता, वो स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है. उसको कितना भी कुछ भी कह दो, कुछ भी हो जाए, कितना भी तकलीफ हो करेगा गाएगा, कितना भी अवस्था में हो. जैसे मान लीजिए ट्रेन में भी कुछ गाने के लिए आते हैं ना, कुछ कुछ दो पांच पैसा दे दो करके, अगर पैसा नहीं मिलेगा तो भी वो गाएगा वो, क्योंकि उसका गाना स्वभाव है. ठीक है वो पैसे के लिए गा रहा अलग बात है, लेकिन उसका गाना उसका स्वभाव ऐसा हो गया. उसको अगर बोले ठीक है तुम मंदिर में आ जाओ, गाओ मत, जप करो, रोज 1000 रुपए दूंगा तुमको, चिंता मत करो. तुम कितना कमा लेते, 200 भी कमाता है ना, चलो तुमको रोज 1000 रुपए दूंगा, गाओ मत, बैठ के जप करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो, या शास्त्र पढ़ो, या पूजा करो, या कुकिंग करो. वो भाग जाएगा, 2 दिन में भाग जाएगा, नहीं कर सकता, इज इम्पॉसिबल. कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी इतना अच्छा सुविधा ब्रह्मचारी आश्रम में, एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ऐसे नहीं, करोड़पति भी इस प्रकार का सुविधा से नहीं जी सकता. शांति से रहे, शांति से प्रसाद ले, जप करे, 2-3 प्रचार कर ले, कुछ लोग शांति से बात करे, इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग गटर में क्यों मरना चाहते बोलिए. इतना कर्म करते, हंगामा करके, इतना मेहनत करके, वो किया क्यों करना चाहते बताओ, क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद भी उसका स्वभाव है, उसको वो दुख को दुख में जीने का स्वभाव बन चुका है इस व्यक्ति का, इसलिए वो नहीं रह पाएगा. उसको शांति का जीवन नहीं चाहिए, उसको शांति से जीना उसका स्वभाव नहीं है. तो शांति का जीवन देंगे तो भी उसको अशांति हो जाती है, दैट इज द नेचर. एक व्यापारी है, कुछ दिन पहले एक व्यापारी हमको मिला था, बहुत नुकसान है, वो है, बहुत रो रहा था, प्रभु जी अभी सुइसाइड करने की मौत पे आया. तो मैंने कहा प्रभु जी मैं आपको एक रास्ता बताऊंगा, आपको क्या चाहिए, बोले प्रभु जी क्या चाहिए हमको, एक रहने के रहने की कुछ जगह चाहिए, थोड़ा प्रसाद चाहिए परिवार वालों को। मैंने बोला कि मैं वो अरेंज करूंगा। बिजनेस छोड़ोगे? चुप हो गया। आपको जीवन भर के लिए रहने का जगह, खाने का, बच्चे परिवार सबको देखभाल का सब कुछ मिल जाएगा, आप अपना बिजनेस छोड़ दोगे, पूरा वाइंड अप करोगे? तो थोड़ा सोच के बताऊंगा। सुइसाइड करने वाला व्यक्ति है, उसको खाने को नहीं है, अभी मर रहा है, इतना परिवार को देखभाल करने के लिए नहीं, उधार ले गए, उधार देना भी बोलो बंद कर दिया, ऐसी स्थिति में है। लेकिन उसका स्वभाव देखो, जो खून है ना, जन्म लिया है ना वैश्य परिवार में, वो छूटेगा नहीं। उसको प्राण जो है, भले ही नुकसान में जाए, लगे मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपना स्वभाव जो व्यापार कर रहा हूं वो नहीं छोड़ूंगा। ये स्वभाव इतना डेंजरस चीज है। तो भगवान ने कहा इधर ये जो नेचर है, इंद्र का स्वभाव बन चुका है, वो जो बैठा है ना सिंहासन में, इंद्र के रूप में मैं बारिश का अधिपति हूं, आई एम द इंचार्ज ऑफ रेन, तो वो सीट छोड़ नहीं सकता। अगर आप पूजा करो ना करो, वेदों में अनेकों अनेकों ब्राह्मण सब स्तुति करते हैं, हो इंद्र आप बारिश देने वाले हो, और उसको अच्छा लगता है बारिश देके, उसको ऐसा लगता है कि मेरे बारिश की वजह से सब लोग जी रहे, एक प्रकार का फीलिंग उसको अंदर है। अगर आप पूजा करो ना करो, वो छोड़ेगा नहीं अपने काम करना, इससे करेगा ही, चिंता मत करो, डोंट वरी, ही विल वर्क। जैसे कुकिंग करने वाला कितना भी रूठ जाए, वो वापस आएगा, वो ही विल कम। पूजा करो ना करो, ही विल वर्क अकॉर्डिंग टू हिज नेचर। जैसे मान लो कोई ब्राह्मण है, वो अध्यापक है या टीचर है, स्टूडेंट रहे ना रहे वो पढ़ाएगा, सामने कोई बैठे ना बैठे वो पढ़ाते रहेगा, उसका काम है उसको वही करेगा, उसका स्वभाव बन चुका है। किसी का व्यापारी है, उसको कहीं भी एक रेगिस्तान में छोड़ दो, ऐसा वर्णन आता है कि एक व्यापारी को रेगिस्तान में छोड़ोगे तो क्या करेगा, उधर दो तीन लोगों को पकड़ के रेती बेच देगा, वो बेच देगा, पैसा बना लेगा उससे, बोले उसके बिना आप जी नहीं सकते, वो देखो ये स्पेशल चीज है, मालूम है बाकी जगह तो मिल रहा है ना, वो थोड़ी ना है, इसके अंदर से सोना मिलेगा आपको, बोलेगा कुछ तो कहेगा, कुछ तो झूठ बोल बोल के कुछ तो करके बेच देगा, स्वभाव है झूठ बोलना पैसा बनाना, वो करेगा ये व्यक्ति। तो इसी प्रकार आप पूजा करो ना करो, जैसे कोई व्यापारी है, नुकसान होने पर बिजनेस नहीं छोड़ेगा, लोग उसको गाली देने पर भी बिजनेस नहीं छोड़ेगा, उसी प्रकार इंद्र जो है, आप पूजा करो ना करो, उसको कुछ भी करो, अपना स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। ये बात कल के श्लोक में सुना। अभी आज के श्लोक में और एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है, कर्म मीमांसा के सिद्धांत का और एक आर्गुमेंट है। देहान बिकॉज इट इज कर्म एंड द कॉज ऑफ द कंडीशन लिविंग इन इट इज टू एक्सेप्ट एंड देन गिव अप डिफरेंट हाई एंड लो ग्रेड्स ऑफ मटेरियल बॉडीज। दिस कर्म इज द एनिमी, फ्रेंड एंड न्यूट्रल। जैसे भगवद गीता में आप ये बात को सुने हैं कि सदस्योनि जन्मशु कारणम गुणसंगस्य सदस्योनि जन्मशु भुंक्ते प्रकृति चेत गुणान कारणम गुणसंगस्य सदस्योनि जन्मशु सदस्योनि जन्मशु। इधर ऊपर का नीचे का अलग अलग प्रकार की योनि हमको क्यों प्राप्त होता है? कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। किसी का अच्छा कर्म है अच्छा योनि प्राप्त होता है, बुरा कर्म बुरा कर्म। किसी का सात्विक कर्म होता है उनको देवताओं का शरीर प्राप्त होता है, या इस मनुष्य में भी उनके बड़े सुंदर शरीर प्राप्त होता है, सात्विक शरीर प्राप्त होता है, शांति का स्वभाव प्राप्त होता है। किसी का राजसिक है उनका शरीर भी बहुत राजसिक शरीर प्राप्त होता है, बहुत शक्तिशाली और अशांत स्वभाव रहता है उसका, जन्म से अशांत स्वभाव रहता है। तो ये सद असत जो जन्मशु ऊंच नीच प्रकार के जो कर्म है या जन्म जो है वो अलग अलग प्रकार कर्मों के हिसाब से प्राप्त होता है। तो हमारे पिछले जन्म में जो भी किए वो जन्म के समय इस जन्म के समय वो निर्धारित है, इसलिए हमको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो कि इंद्र के पूजा करने के द्वारा हमारा कुछ अलग परिस्थिति होने वाला है। हमारे जो कर्मों के अनुसार ही हमको ये जन्म मिला है, जन्म मिलने के बाद हमारा प्रारब्ध कर्मों को अनुभव करना ही पड़ेगा। इसलिए अगर आप सच में कुछ चाहते हो क्या करो, कर्म करो। लेकिन आप कितना भी कुछ भी कर्म कर लो, अगला जन्म में आपको जो इस जन्म में कर्म किया है उसी के अनुसार मिलने वाला है। इसलिए भगवान ने कर्म मीमांसा सिद्धांत के जो जो रूट है, जो मूल बीज है, उसको क्या किया, लास्ट श्लोक में लास्ट टाइम उन्होंने कह दिया, कर्मैव, कर्म ही एकमात्र चीज है जो गुरु ईश्वरः, जो गुरु है ईश्वर है। तो कर्म मीमांसा सिद्धांत में कुछ खूबियां हैं और गलती है। खूबी ये है कि ईश्वर को स्वीकार करते हैं, व्यास देव स्वयं इस बात को कहते हैं। दूसरी बात यह है कि खूबी और एक बात यह है, कर्म तत्व जो है या कर्म के सिद्धांत जो है उसको स्पष्ट रूप में वर्णन किया गया है, ये खूबी है। लेकिन गलती ये है कि वो भगवान को स्वतंत्र नहीं मानते, भगवान को कर्म के ऊपर नहीं मानते, कर्म के अधीन मान लेते हैं, ये समस्या है। इस श्लोक में जो कहा गया है कि शत्रु मित्र उदासीना, शत्रु मित्र उदासीना, तो हमारे जीवन में तीन प्रकार की अवस्थाओं को हम प्राप्त करते हैं, एक व्यक्ति के से, एक वस्तु से। एक व्यक्ति से हम शत्रुत्व बनाते हैं क्योंकि उसने हमको बुरा किया, दूसरा एक व्यक्ति से मित्रता बनाते हैं क्योंकि उसने हमको अच्छा किया, एक व्यक्ति के प्रति उदासीन रहते हैं, उसे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमको अच्छा करता है ना बुरा करता है, वो उसे न्यूट्रल है। तो हर एक वस्तु के साथ तीन प्रकार के व्यवहार होता है, या उसे प्रेम करते हैं, या उसे द्वेष करते हैं, या उसे अपेक्षा करते हैं। तो ये वस्तु नहीं है या एक व्यक्ति नहीं है जो हमको सुख दे दुख देने वाला, कर्म ही है। हमारे कर्मों के अनुसार एक व्यक्ति के द्वारा हमको दुख मिलता है, हमारे कर्मों के अनुसार एक व्यक्ति के द्वारा हमको सुख मिलता है, और हमारे कर्मों के अनुसार एक व्यक्ति के द्वारा हमको ना सुख मिलता ना दुख मिलता है। इसलिए ये जो तीनों प्रकार की अवस्था, सुख दुख और तटस्थ, ये अवस्था जो है व्यक्ति या वस्तु के ऊपर आधारित नहीं है बल्कि हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है। तो ये हमारे आत्म साक्षात्कार में बहुत उपयोग है इस प्रकार का विचार। भगवद्गीता में भगवान इस बात को कहते हैं, सीता प्रज्ञश्च का भाषा किम प्रभाषेत, किम प्रभाषेता, उस जो प्रश्न है उसका जवाब देते हुए भगवान ने दो श्लोकों का उच्चारण किया। तो एक श्लोक में उन्होंने उच्चारण किया, सुख और दुख जो है संसार में हमको प्राप्त होता है, ये सुख और दुख कैसे प्राप्त होता है, कर्मों के आधार प्राप्त होता है। इसलिए भक्त जो है वो सुख में सोचता है कि ये मेरे कर्मों के हिसाब से अस्तित्व में सुख मिलना था, मिल रहा है, असलियत में भगवान की कृपा ऐसा है कि मुझे जितना मिलना था उसे ज्यादा मिल रहा है। दूसरी बात दुख, जब दुख आता है सोचता है कि मेरे कर्मों के हिसाब से दुख मिल रहा है। तो सुख और दुख की परिस्थिति में भक्त को कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये कर्म मीमांसा सिद्धांत में बहुत गहरी शिक्षा आपको प्राप्त होती है। यही कर्म मीमांसा सिद्धांत के हम रीति नियमों का पालन नहीं करेंगे, कर्मकांड नहीं करेंगे, लेकिन ये जानना कि मेरे जीवन में कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों की वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ समबडी एल्स। इसलिए भगवान ने कहा दूसरे श्लोक में, अगर कोई सोचे ये दुख दे रहा है मुझे, ये सुख दे रहा है, इसकी वजह से मेरे जीवन में सब तकलीफ हो रहा है, नहीं, ये गलत है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो श्लोक है, सर्वत्र विस्नेहस्य तत्प्राप्य शुभाशुभम नाविनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठाः। ये जो श्लोक में भगवान ने कहा, हे अर्जुन सुनो, जब कोई आपको सुख देता है ये मत बोलो न अभिनन्दति, उसको थैंक यू मत बोलना, क्योंकि वो सुख नहीं दे रहा है, आपके कर्मों में जो सुख था ना, खाली वो एक पोस्टमैन के रूप में आके आपको दे रहा है। दूसरा क्या है, दुख दिया, मान लो कोई व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, वो दुख नहीं दे रहा है, आपकी कर्मों को आपको दे रहा है बस, इसलिए न द्वेष जो उसे द्वेष मत करो। इसलिए थैंक यू वेरी मच बोलना और उसी व्यक्ति को बाद में बोलना आई हेट यू, आई लव यू और हेट यू, सो कोई अर्थ नहीं है, नो मीनिंग। तो इसी बात को इधर भगवान कह रहे हैं, हे पिताजी, आप बोलोगे इंद्र की वजह से हमको बारिश मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपकी कर्मों के हिसाब से ही बारिश मिल रहा है। और इंद्र भी बारिश क्यों दे रहा है, क्योंकि उसने ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से उसको पोस्ट मिला है। इसलिए चिंता मत करो, कोई जरूरत नहीं है। तो अभी कर्म मीमांसा सिद्धांत को वर्णन करने के बाद आगे कृष्ण जो है वो वर्णन करते हैं किसका, सांख्य सिद्धांत के ऊपर, सत्व रजस तम, इन तीनों के मिश्रण के अनुसार, इन तीनों के गुणों के ऊपर नीचे होने के अनुसार अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं इस जगत में होती है। ये पूरा जैसे साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये पूरा जगत ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन से हो रहा है, केमिकल्स की वजह से हो रहा है। सांख्य लोग कहते हैं कि तीन केमिकल है, सात्विक रजसिक तमसिक, ये तीन केमिकल के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, ऐसे विचार है सांख्य दार्शनिकों का। तो सांख्य दर्शन के अनुसार आधारित होते हुए भगवान आगे नंद महाराज को वर्णन करते बताते हैं, आपको इंद्र की पूजा करने की जरूरत नहीं है, गायों को, ब्राह्मणों को, गोवर्धन का पूजा करो, ठीक है। हरे कृष्ण। हाँ।